ओम शांति। आप सभी का इस मेडिटेशन सेशन में स्वागत है। पहला सेशन है और लगातार 3 सेशंस हर सुबह मेडिटेशन का होगा। और ये जो मेडिटेशन हम सीखने जा रहे हैं अभी, इसका नाम है राजयोग। सभी ने ये शब्द सुना होगा, योग। योग का यथार्थ अर्थ है जोड़, मिलन। वियोग का अर्थ है अलग होना, सेपरेट हो जाना, बिछड़ना, है ना। तो हम जन्म से ही योगी तो है, योगी है आप सभी। हमेशा लगातार हर रोज किसी ना किसी व्यक्ति को याद करते हैं, किसी ना किसी वस्तु को याद करते हैं, है ना। जब हम याद करते हैं किसी को, वो कनेक्शन जुड़ जाता है, है ना। जब हम किसी को याद कर रहे हैं और उन्हीं का फोन आ जाता है, उसी व्यक्ति का फोन आ जाता है, तो हम कहते हैं योग था, कहीं ना कहीं योग है, कनेक्शन है। तो इसीलिए हम वो उनका फोन आया, या हम वो किसके बारे में सोच रहे हैं वही व्यक्ति सामने आ जाते हैं, तो सोचते हैं कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन है, योग है, है ना? तो योग अनेक प्रकार के होते हैं। वस्तुओं का भी जब मिश्रण होता है ना, दूध में जब शक्कर मिलाते हैं, शक मिल जाता है, तो उसको सेपरेट करना, अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो वस्तुओं का मिलन, यहां भी जब हम किसको याद करते हैं तो व्यक्ति के साथ कनेक्शन जुड़ जाता है, वस्तु के साथ कनेक्शन जुड़ जाता है। लेकिन ये राजयोग क्यों है? क्योंकि यहां कनेक्शन परमात्मा के साथ है। वस्तु के साथ कनेक्शन जोड़ने से हमें कुछ प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि आत्मा चैतन्य है और जो वस्तु है वो जड़ है। जड़ वस्तु से हमें कुछ प्राप्ति नहीं होती। हाँ, वो याद करके थोड़ा बहुत खुश हो सकते हैं, गाड़ी को, बंगले को, उसको याद करके थोड़ा खुश हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ प्राप्ति हो जाए, कुछ मिल जाए आत्मा को, ऐसे नहीं होता। जब हम इंसान को याद करते हैं, व्यक्ति को याद करते हैं, तभी हमें प्राप्ति होगा जब वो व्यक्ति हायर एनर्जी लेवल में अगर है, सकारात्मक शक्तिशाली अगर वो आत्मा है, उनको याद करने से हमें वो शक्ति, वो सुख मिल सकता है। लेकिन उस व्यक्ति का ही एनर्जी लेवल अगर लो है तो हमारे एनर्जी और ही डिप्लीट हो जाएगा, और ही बह जाएगा, तो वहां कुछ प्राप्ति नहीं होगा। तो इसीलिए जो सर्वश्रेष्ठ योग, कौन सा योग है? परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना, है ना। परमात्मा हमेशा हायर एनर्जी लेवल में होता है, सर्वशक्तिमान है, सदाशिव, सदा सर्वशक्तिमान। ऐसा नहीं कि उनके एनर्जी लेवल फ्लक्चुएट होता है, ऐसा नहीं है, कि सदा सर्वशक्तिमान है। तो इसलिए जब भी हम उनके साथ कनेक्शन जोड़ते हैं तो वो एनर्जी, वो शक्ति हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन एक कनेक्शन जोड़ने के लिए भी कुछ नियम है, है ना? वो नियम क्या है? सबसे पहला स्टेप है इस मेडिटेशन का, इस राजयोग का, कि स्वयं को पहचानो, स्वयं का यथार्थ परिचय। क्योंकि यहां कनेक्शन हो रहा है आत्मा का परमात्मा के साथ। तो आत्मा, आत्मिक ज्ञान, मैं कौन हूं, आत्मा की शक्तियां क्या है, गुण क्या है, उसका संपूर्ण समझ होना जरूरी है। तो सेकंड स्टेप है परमात्मा को समझना। आज के इस सेशन में हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं, जो पहला स्टेप है इस मेडिटेशन का, और कल सुबह परमात्मा को समझने की कोशिश करते हैं, और तीसरा दिन है उस परमात्मा के साथ कनेक्शन हम कैसे जोड़े, और कनेक्शन जोड़ने की आवश्यकता क्या है, और कनेक्शन जोड़ने से प्राप्तियां क्या होती है, है ना? तो आज जो हम देखने जा रहे हैं, समझने की कोशिश जो कर रहे हैं, स्वयं के बारे में। जब भी हम स्वयं का परिचय, किसी को बोलते हैं कि परिचय दीजिए आप अपना, तो यूजुअली क्या क्या बातें हम बताते हैं, अपना नाम बताते हैं, अपना प्रोफेशन बताते हैं, अपना एड्रेस बताते हैं, जो भी दूसरी बातें भी हम बताते हैं, जो भी हम अपना परिचय में दे रहे हैं, नाम है, प्रोफेशन है, क्वालिफिकेशन है, एड्रेस है, जो भी हम बता रहे हैं, वो ये इस देह का परिचय है कि नहीं? क्योंकि यहां दो बातें हैं, दो चीजें हैं, एक है चैतन्य शक्ति और एक है जड़। जो अभी तक जो हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे थे, वो अपना नाम, देश, काल, पोजीशन, क्वालिफिकेशन, धर्म या फिर जेंडर, इन सभी बातों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जब भी कोई प्रोफेशन में है और जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो क्या लगाते हैं, मिनिस्टर है, जो MLA है, MP है, जो भी है, रिटायर्ड हो जाते हैं या फिर उस पोजीशन से निवृत्त हो जाते हैं तो X लगाया जाता है, या फॉर्मर कहा जाता है, या पूर्व कहा जाता है, है ना? तो हम वो पोजीशन तो हमसे निकल गया, है ना? फिर भी हम उसके साथ कनेक्टेड हैं, कनेक्शन फील मना है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उस चीज से हम कुछ पा रहे हैं। लेकिन वो होने से पहले, वो MLA या MP या मिनिस्टर होने से पहले भी वो अस्तित्व थे, वो थे इस संसार में, उसके बाद भी इस संसार में रहेंगे, है ना? तो वो जो शक्ति है वो क्या है, जो इस सभी बातों से जो अलग है, भिन्न है, ऊपर है, क्योंकि ये जो भी आइडेंटिफिकेशन अपने आप के साथ परिचय दे रहे हैं, अपना परिचय के साथ जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो इस देह का है। वो फिर ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है फिर हमारा, इन पंच तत्वों से बनी हुई जो पुतला है, ये जो शरीर है, वो एक दिन तो हमें छोड़ के जाना होगा। ये जड़ है, हमें पता है, और आत्मा कहे या फिर स्पिरिट कहते हैं, रूह कहते हैं, या फिर सोल कहते हैं, वो जो प्राण है, वो जो एनर्जी है जो इस शरीर में संचार कर रहा है, क्या वो मैं हूं या फिर ये देह मैं हूं, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? ये देह आप है या फिर जो शक्ति है, जो प्राण है, जो आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, तो वो जो शक्ति है वो आप है, क्या कहेंगे? सोल, आत्मा, क्यों ऐसे कहते हैं? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति, जिस व्यक्ति का देहांत हो जाता है, वो शरीर तो इंटैक्ट है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ऊपर से तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है, आंख, कान, नाक, सब कुछ ठीक है, शरीर, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ये हमसे दूर हो गए, हमसे चले गए, इस दुनिया से चले गए। दिखाई तो दे रहे हैं, शरीर तो दिख रहा है, फिर भी हम कह रहे हैं हमसे दूर चले गए। तो ऐसे कौन सी शक्ति है जो चली गई है? अभी 5 मिनट पहले जब आत्मा थी उस शरीर में, उनको हम प्यार करते थे, रेस्पेक्ट कर रहे थे, उनके साथ संबंध था, लेकिन जैसे ही वो प्राण निकल गया, फिर उसके बाद हम 3 दिन भी घर में उस शरीर को नहीं रखते हैं। भले हम कितना भी प्यार करें उस व्यक्ति से, लेकिन शरीर को हम 3 दिन भी घर में नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि पता है जिनसे हम प्यार करते थे, जिनके साथ हमारा संबंध था, वो शरीर नहीं था, वो आत्मा थी, है ना? तो आत्मा निकलते ही उस शरीर का कोई भी वैल्यू नहीं रहा, है ना? भले शरीर अभी आज हम देखे, ये शरीर का वैल्यू अगर लगाया जाए तो करोड़ों में जाएगा, है ना? और हर ऑर्गन का देखा जाए तो करोड़ों में जाएगा, लेकिन इस शरीर की वैल्यू तब तक है जब प्राण इस शरीर में है, आत्मा इस शरीर में है। आत्मा निकलते ही इस शरीर का कोई भी वैल्यू नहीं है। और अभी तक जो हम मेहनत कर रहे हैं, किसकी देखभाल करने के लिए? शरीर की देखभाल करने के लिए या आत्मा की देखभाल करने के लिए? जो सुबह से शाम तक हम मेहनत करते हैं, है ना? अब अपने आप को पूछिएगा, किसके लिए मेहनत कर रहे हो? शरीर के लिए, दो वक्त रोटी के लिए और सिर पर छत के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। और इस हम ये नहीं कह रहे देह का कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू है, लेकिन जब तक आत्मा है तब तक इस शरीर की वैल्यू है। और दोनों जुड़े हुए साथ में, आत्मा के बिना इस शरीर का कोई वैल्यू नहीं है, और शरीर के बिना केवल आत्मा कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। अगर आत्मा को बोलना है, इस शरीर का सपोर्ट तो लेना पड़ेगा। अगर मुझे आत्मा को बोलना है, मुख हो तो बोलेंगे, कान हो तो सुनेंगे, तो इस शरीर का आधार लेना पड़ता है, तब जाकर के आत्मा कर्म कर सकती है, नहीं तो नहीं कर पाएगी, है ना? लेकिन इन दोनों में से वैल्यूबल कौन सा है, मूल्यवान क्या है, कौन है? आत्मा, है ना? और जो भी मेहनत अभी कर रहे हैं इस शरीर की देखभाल करने के लिए, हाँ वो तो जरूरी है, शरीर है तो आत्मा है, लेकिन जब इस शरीर छूटने के बाद द आत्मा नेक्स्ट जर्नी में, यात्रा में जब जाती है, तो क्या लेके जाएगी, क्या लेके जाएगी, क्या लेके जाएगी? जो कर्म हमने किया है, अच्छा या बुरा कर्म, वही हम लेके जाते हैं, उस पर हमने ध्यान दिया है। आत्मा को सशक्त बनाने के, शरीर को हम हेल्दी रखने के लिए बहुत ध्यान रखते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, फिर उसको एक्सरसाइज कराते हैं, अच्छा नींद कराते हैं, ये सब जरूरी है शरीर को, शरीर की देखभाल करने के लिए, शरीर को हेल्दी रखने के लिए, लेकिन आत्मा को हेल्दी रखने के लिए हम कुछ पुरुषार्थ कर रहे हैं। कुछ समय 24 घंटों में से आत्मा के लिए कितना मिनट हम निकालते हैं, जो बहुत वैल्यूबल है, वो हम साथ में लेके जाने वाले हैं, है ना? तो आत्मा चिंतन की जरूरत है, और 24 घंटों में से थोड़ा समय भी, भले आप 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा ना निकाले, एटलीस्ट थोड़ा समय भी निकाल करके जब आत्मचिंतन के तरफ अपना ध्यान देते हैं, तो आप देखेंगे तो आत्म उन्नति होता जाएगा, जीवन में सुख शांति समृद्धि आता जाएगा। है ना। तो इसीलिए आत्मा का जो निवास स्थान है, ये बात तो समझ गए ना कि आत्मा और शरीर ये दो अलग अलग बातें हैं। आत्मा में चैतन्यता है और शरीर जड़ है, राइट। तो अभी इस दूसरी बात में चलते हैं, आत्मा इस शरीर में विराजमान कहाँ है। वैसे तो प्राण पूरे शरीर में है, जब आत्मा इस शरीर में है, जब प्राण है, जिंदा है, कुछ भी थोड़ा कट हो जाता है, दर्द होने लगता है, कुछ भी होता है, छोटा छोटा मोटा जो कुछ भी होता है दर्द होने लगता है, क्योंकि प्राण पूरे शरीर में है। और वही डेड बॉडी को कहीं भी काटे कुछ भी दर्द नहीं होता। लेकिन कोई भी ऐसे जगह होनी चाहिए बैठ करके पूरा शरीर का संचालन कर सके। तो इसीलिए कहते हैं आत्मा का निवास स्थान इस ब्रुकुटी के मध्य में है, इस पूरे स्कल के बीच में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो वहां आसपास वहां है। ब्रेन में क्यों है, आत्मा वहां क्यों है, क्योंकि जैसे गाड़ी में ड्राइवर कहाँ बैठता है, जहां स्टीयरिंग है, जहां एक्सेलेटर है, जहां ब्रेक है, जहां कंट्रोलिंग पॉइंट्स है, तो वहां बैठना होगा। फ्लाइट में पायलट कहाँ बैठता है, जहां बटन्स है, कंट्रोल कर सकता है, तो वहां बैठेगा। तो पीछे बैठ करके उस व्हीकल को वो कंट्रोल नहीं कर सकता, जहां कंट्रोलिंग पॉइंट्स है तो वहां बैठ करके करना होगा। और इस पूरे शरीर के जो कंट्रोलिंग पॉइंट्स है वो है ब्रेन है, और इसके कारण से फिर वहां आत्मा विराजमान होकर के वो पूरा शरीर का संचालन करती है। और दूसरी बात ये है जो प्रथा में आता है वो है, जब भी हम भाग्य की बात करते हैं, है ना, भाग्य की बात करते हैं तो कहाँ जाता है हाथ, मेरा भाग्य ही ऐसा है, ऑटोमेटिकली यहाँ जाएगा, मेरा भाग्य ही फूटा हुआ है, मेरा भाग्य ही ऐसा है। तो यहाँ क्यों गया, भाग्य यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है, नहीं, फिर भी हमारा हाथ यहाँ क्यों जाता है, यहाँ क्यों जाता है, क्योंकि पता है शरीर भाग्यवान नहीं है, आत्मा के अंदर वो भाग्य है। आत्मा जो कर्म करती है, दुर्भाग्यशाली या फिर सौभाग्यशाली, वो आत्मा है, शरीर नहीं है। तो इसलिए पता है अनजाने अनजाने में कि आत्मा यहाँ है, इसलिए ऑटोमेटिकली हाथ वहां चला जाता है। और जब भी हम पूजा अर्चना, हिंदू धर्म में पूजा अर्चना करते हैं, तो तिलक लगाया जाता है, और सबसे पहले जब मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं, अपना जूता चप्पल बाहर निकाल करके फिर अंदर जाते हैं, तिलक लगा करके फिर पूजा अर्चना किया जाता है। जो भी भक्ति मार्ग में हम करते आए हैं, कुछ ना कुछ आध्यात्मिक रहस्य जरूर है। उसमें आध्यात्मिक रहस्य क्या है, जूता चप्पल बाहर निकालना माना देह का भान त्याग करना। परमात्मा के सामने कोई बड़ा या छोटा नहीं है, परमात्मा के सामने हर आत्मा एक समान है। वो कौन सा पोजीशन वाला, कौन सा धर्म वाला, कौन से देश वाला परमात्मा देखता नहीं है, एक समान है। तो देह का भान त्याग करके जब मैं अपने आप को आत्मा समझ करके जब परमात्मा को याद करती हूँ, तो वो याद जुड़ जाता है, वो कनेक्शन जुड़ जाता है। तिलक लगाना माना आत्मिक स्मृति, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना। तो इसीलिए यहाँ तिलक यहाँ वहां नहीं लगाते, यहीं लगाते हैं। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जब ये मृत्यु होता है, देह का मृत्यु होता है ना, तो इसीलिए देह को कहा जाता है अरथी, अर्थी, अर्थी माना जिसके जिस रथ में रथी ना हो, जिस गाड़ी में ड्राइवर ना हो, वो अर्थी हो जाता है। क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा का कोई मृत्यु नहीं है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, तलवार से काटा नहीं जा सकता, भिगो नहीं सकता, पंच तत्व उसको प्रभावित नहीं कर सकता है। और इसलिए आत्मा और शरीर का संबंध बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। तो इसलिए कहते हैं आत्मा, शरीर सीप है और आत्मा मोती है। मोती की वैल्यू है, सीप जरूरी है वो मोती बनने के लिए, और आत्मा ड्राइवर है और शरीर कार है। आत्मा ओनर है, घर कहते हैं ना, ये फलाने व्यक्ति का घर है, ऐसे ही शरीर भी, ये शरीर भी मुझ आत्मा का निवास स्थान है, और मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूँ, और आत्मा रथी है और मेरा रथ है। जैसे अलग अलग कनेक्शंस हम जोड़ सकते हैं, ये अलग अलग बातें समझने के लिए अलग अलग कनेक्शंस हम जोड़ सकते हैं। इसीलिए आत्मा इस पंच तत्वों बना हुआ, पंच तत्वों से बना हुआ जो ये शरीर है उसका मालिक आत्मा है, शरीर मालिक नहीं है, आत्मा मालिक है। शरीर को चलाने वाली, जैसे इन आंखों से देखने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, इन कानों से सुनने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, जो भी कर्मेंद्रिय यूज कर रही है वो आत्मा यूज कर रही है, शरीर ऑटोमेटिकली उसके साथ जाता है, है ना। नेक्स्ट बात ये हम समझने की कोशिश करते हैं, आत्मा की जो शक्तियां हैं, जो ओरिजिनल निजी गुण है वो कौन कौन सा है, है ना। कई बार हम सुनने, लोग कहते हैं जब चिड़ापन होता है, फिर गुस्सा होता है, फिर ये कि बहन जी ये मैं हूं ही ऐसे, मेरा नेचर ही ऐसा है, मेरा मैं हूं ही ऐसे, जब ये नेगेटिविटी के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं तो क्या होगा, क्या आत्मा निजी रूप में ओरिजिनली ओरिजिनली क्या आत्मा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप क्या कहेंगे? ओरिजिनली आत्मा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? थोड़ा थोड़ा नेगेटिव भी है, आत्मा वैसे शक्तिशाली है लेकिन थोड़ा बहुत है, ऐसा है? मैं क्या पूछ रही हूँ, ओरिजिनली ओरिजिनली प्योर है, ओरिजिनली शुद्ध है, पावन है, लेकिन फिर ये जो हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये मेरा गुण है, मैं हुई है ऐसे, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जो भी अशांति है, तो ये जो भी गुण अवगुण से के साथ हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्या ये अवगुण आत्मा के ओरिजिनल गुण है? नहीं है। ये कहां से आया फिर ये सब, ये कहां से आया? कहीं ना कहीं हम कर्म करते करते कहीं ना कहीं से हम उठा लेते हैं, और ये भी बात है जो आत्मा के अंदर जब शक्तियां कम हो जाती तो फिर उसकी जो नेगेटिविटी का जो हावी है वो आत्मा पर प्रभाव डालता है। जैसे इस अगर इस हॉल में पूरा अंधेरा है ना, पूरा अगर अंधेरा है, इसके अंदर रोशनी लाने के लिए तो क्या करेंगे हम ये कहें अंधेरा भाग जाओ, अंधेरा भाग जाओ तो रोशनी आएगा, अंधेरा जाएगा तो रोशनी आएगा, क्या कहेंगे? प्रकाश आएगा तो अंधेरा जाएगा, ऐसा नहीं कि अंधेरा जाएगा तो प्रकाश आएगा, ऐसी बात नहीं है। और लाइट की परिभाषा क्या है, प्रकाश की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है लाइट की, डेफिनेशन क्या है? अंधेरा, अंधेरे की परिभाषा क्या है, अंधेरे की परिभाषा क्या है? इसमें ज्ञान अज्ञान की बात नहीं करिए, अंधेरा, ये जो अंधेरा है उस डार्कनेस को, अंधेरे को, उसको अगर डिफाइन करना है, उसके पर उसको एक्सप्लेन करना है, तो उसको क्या कहेंगे अंधेरे को? जो भी घोर है या घोर ना हो, अंधेरा है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कैसे डिफाइन करेंगे? क्या अंधेरा क्या है? अंधेरा क्या है? लाइट का ना होना अंधेरा है, प्रकाश का ना होना अंधेरा है, एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। ठीक है, जब सूर्य अस्त होता है तो ऑटोमेटिकली अंधेरा छा जाता है, प्रकाश का ना होना अंधेरा है। और प्रकाश क्या है? अभी प्रकाश क्या है? जहां अंधेरा ना हो वो प्रकाश है। सोचिए, प्रकाश किसको कहते हैं? नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, लाइट लाइट है। ठीक है, ये हम आर्टिफिशियल लाइट में ही बैठे हुए हैं, है ना, लाइट लाइट है। प्रकाश को क्या कहेंगे? लाइट एनर्जी है ना, लाइट एक एनर्जी है, प्रकाश एक एनर्जी है, और अंधेरे के साथ उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रकाश का स्रोत है प्रकाश। मुझे यहां से लाइट मिल रहा है, सनराइज, जब सूर्योदय होता है तो ऑटोमेटिकली लाइट मिल जाता, प्रकाश छा जाता है, तो वहां सूर्य से मुझे प्रकाश मिल रहा है, बल्ब से मुझे प्रकाश मिल रहा है, तो प्रकाश का स्रोत है। अंधेरे का स्रोत है? अंधेरे का स्रोत है नहीं है। तो कौन पावरफुल है, कौन सा शक्तिशाली है? प्रकाश शक्तिशाली है, अंधेरा शक्तिशाली है? प्रकाश शक्तिशाली है ना। अगर इसकी तुलना गुण अवगुण के साथ अगर करते हैं, प्रकाश गुण है, अवगुण अंधेरा है। गुण में शक्ति है, अवगुण में शक्ति है? गुण में शक्ति है। और अवगुण क्या है? गुण का ना होना अवगुण है। समझ में आया अभी? गुण का ना होना अंधेरा, जैसे प्रकाश का ना होना अंधेरा है, ऐसे गुण का ना होना अवगुण है। आत्मा के अंदर ये जो सातों ही गुण आप देख रहे हैं, ये ओरिजिनल गुण है आत्मा के अंदर, है ना। इसके परसेंटेज अगर कम हो गया, जैसे शांति का परसेंटेज मुझे आत्मा के अंदर कम हुआ, तो कौन सा अवगुण आएगा? अशांति, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब कुछ बढ़ेगा। गुस्सा, गुस्से के अंदर अपने आप शक्ति नहीं है। गुस्सा क्यों हो रहा है? आत्मा के अंदर शांति का परसेंटेज कम होने के कारण से गुस्सा, अशांति हो रहा है। अभी क्या अंधेरे को भगाने का प्रयास करना है? गुस्से को भगाने का प्रयास करना है? नहीं, क्या करना है? प्रकाश को लाने का प्रयास करना होगा। गुस्से को भगाना है तो क्या करना होगा? शांति की अनुभूति बढ़ानी होगी। जैसे शरीर में पानी का परसेंटेज कम होता है तो क्या होगा? प्यास लगता है, है ना। कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं 75% 80% इस शरीर में पानी है। पानी का परसेंटेज कम होता है तो प्यास लगता है, पानी पीते हैं, पानी पीते ही वो परसेंटेज बॉडी में ठीक हो जाने के कारण से फिर नॉर्मल हो जाएगा, है ना। ऐसे ही आत्मा के अंदर ये सातों ही गुण ओरिजिनल है। इन गुणों के परसेंटेज कम होने से अवगुण आ जा। तो वो जब गुण हम अनुभव करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके कनेक्टेड जो अवगुण है वो निकल जाएगा, है ना। तो इसलिए हम ये नहीं समझे कि ये अवगुण मेरा है, नहीं मेरा अपना नहीं है, ये आ गया, ये परसेंटेज कम होने के कारण से आ गया है, इसको मैं ठीक कर सकती हूँ, है ना। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते तो प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे सुबह उठ करके नहा धो करके मैं सफेद कपड़ा पहन करके निकलती हूँ मार्केट में, बहुत सारा काम है, कुछ खरीदारी करना है, कुछ काम है, ऑफिस में जाना है, सब कुछ धूप पोल्यूशन मिट्टी कीचड़ सब में घूम करके सब काम करके, फिर जब मैं वापस शाम को लौटती हूँ घर तो मेरा कपड़ा कैसा रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ धब्बा रहेगा, कुछ खाते समय कुछ गिरा दिया या कीचड़, चलते समय कुछ गाड़ी आ गया तो फिर कीचड़ उछल गया, तो कहीं ना कहीं दाग धब्बे है। तो शाम को जब मैं अपने कपड़े को देखती हूँ दाग धब्बों के साथ, अगर मैं कहूँ ये मेरा कपड़ा ऐसा ही था तो क्या होगा, क्या होगा, मैं उसको साफ करने की मेहनत नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। मुझे पता है ये जो धब्बा या नहीं था पहले, ये ओरिजिनली साफ था, है ना। तो वो डिफरेंस पता है, ये कपड़ा मेरा ऐसा था, अभी ये धब्बा आ गया, तो फिर मैं उसको साफ करने की मेहनत करती हूँ। लेकिन उस दाग वो डिजाइन में दाग धब्बा डिजाइन के साथ मिल गया और मैं उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो धब्बा ऐसा ही था, वो डिजाइन ऐसा ही था, तो मैं साफ करने की मेहनत नहीं करूंगी। ऐसे ही अगर मेरा कुछ अवगुण है, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मैं हुई ऐसे, तो क्या होगा, उसको निकालने की मेहनत मैं नहीं करूंगी। और मुझे पता है मैं आत्मा शुद्ध हूं, ये अवगुण मेरा अपना नहीं है, तो मैं उसको निकाल सकती हूँ। अभी डिफरेंस पता चला, आप आत्मा इन सातों ही गुणों से संपन्न है ओरिजिनली, है ना। इन अवगुणों ये गुण जब कम हो जाते हैं तो क्या होता, अगर ज्ञान कम होता तो अपने अंदर को डाउट आ जाएगा, फिर अंधश्रद्धा, किसने कुछ बोल दिया उसको ऐसे ही फॉलो करना शुरू कर दिया अंधश्रद्धा से, तो थोड़ा बहुत ईगो भी आ जाएगा। ये सारे जो नेगेटिविटी ज्ञान की कमी, विजडम की कमी के कारण से होता है, और प्योरिटी की कमी, पवित्रता की कमी के कारण से सारा नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, ये सब कुछ जो गलत चीजें हैं वो सब कुछ बढ़ना शुरू हो जाता है। और आत्मिक प्रेम की कमी जब होता है और स्वार्थ बढ़ जाता है, कोई और प्यार नहीं कर रहा है क्योंकि प्यार की अनुभूति नहीं हो रहा है, सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति नहीं हो रहा है, तो खुद को ही प्यार करने लगते हैं और वहां स्वार्थ, सब कुछ मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए पाने की कोशिश करते हैं और सेल्फ इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। और शांति की कमी होगा तो गुस्सा, टेंशन, डर, ये सब कुछ बढ़ेगा। और खुशी की कमी होगी तो फिर लालच, लोभ, संतुष्टता की कमी है ना, खुशी नहीं है तो संतुष्टता नहीं है, संतुष्ट नहीं है तो फिर लालच, लोभ पाने की कोशिश, शायद इसको पाने से मुझे खुशी मिलेगी, शायद इसके साथ संबंध जोड़ने से मुझे खुशी मिलेगी, तो ये लालच लोभ बढ़ता जाएगा, जलसी बढ़ रही, ईर्ष्या, द्वेष, उसको मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है तो वहां ईर्ष्या, है ना। और फिर आनंद की कमी है तो फिर अटैचमेंट बढ़ना शुरू होगा, मोह बढ़ना शुरू हो जाएगा। और शक्ति की कमी है, आत्मा के अंदर मनोबल, आत्मा की शक्ति की कमी के कारण से पोजीशन, फिर मसल पावर, इससे हम रोब दिखाना शुरू करते समाज पे, लोगों पे, जो वीक वीकर सेक्शन है तो उसके ऊपर हम रोब दिखाना शुरू करते हैं, क्योंकि आत्मा के अंदर शक्ति की कमी के कारण से फिर कहीं ना कहीं वो रोब दिखाना है, तो उस रीति से वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इसीलिए इन सभी सातों ही गुणों की जब अनुभूति होगी, धीरे 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 हम इन अवगुणों को निकाल सकते हैं। और इन अवगुणों को निकाले कैसे, वह आत्मा कैसे कर्म करती है, तो वो हम अभी समझेंगे नेक्स्ट इसमें। जैसे इस शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग कर्मेंद्रियां हैं, ऐसे आत्मा के अंदर भी तीन कर्मेंद्रियां हैं, वो है मन, बुद्धि और संस्कार। मन देख रहे हैं, माइंड, मन वो वेव्स देख रहे हैं उसके अंदर, वेव्स जो मन के अंदर बहुत सारे विचार आ रहे हैं, जैसे सागर में वेव्स देखते हैं वो एक के पीछे एक लगातार आते हैं, वो लहरें, ऐसा कभी नहीं होगा लहरें ना हो सागर, सागर की पहचान है लहर, लहर ना हो उसको सागर नहीं कहेंगे, उसको तालाब कहेंगे, उसको कुछ और नाम दे सकते हैं लेकिन सागर नहीं कहेंगे, सागर की पहचान है लहर। ऐसे ही मन की पहचान है एक के पीछे एक विचार का, विचारों का उत्पन्न होना। जैसे आप यहां बैठे हुए हैं, भले आप सुन रहे हैं लेकिन सुनते हुए भी कभी कभी मन कहीं जा रहा है, कभी घर में जा रहा है, कभी बच्चों की तरफ जा रहा है, कभी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जा रहा है, कोई कुछ कोई ना कोई विचार आ रहा है, आधे घंटे पहले आने से पहले किसी ने कुछ बोला होगा, देखा होगा, वो सब कुछ विचार चल रहे हैं, है ना। तो लगातार एक के पीछे एक विचार चलते हैं, यही पहचान है मन का, है ना। तो इसीलिए मन के अंदर बहुत सारे विशेषतः चार प्रकार के विचार चलते हैं, वो है सकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार, व्यर्थ विचार और आवश्यक विचार। सकारात्मक विचार उसको कहा जाता है जो गुणों के आधार से विचार चलते हैं और जिसके जिससे हम दूसरों को भी सुख देते हैं और स्वयं को भी सुख मिलता है, पॉजिटिव थॉट्स। और पॉजिटिव थॉट्स सकारात्मक विचारों में शक्ति है। और पॉजिटिव और नेगेटिव, सिंपल मैथमेटिक्स से, जितना हम सकारात्मक सोचना शुरू करते हैं आत्मा की शक्ति बढ़ना शुरू हो जाएगा, नकारात्मक जितना सोचते हैं आत्मा की शक्ति बहुत जल्द कम होना शुरू हो जाता है। नेगेटिव विचार क्या है? नेगेटिव विचार वो विचार है जिससे हम दूसरों को दुख देते हैं और रिटर्न में खुद भी दुखी होते हैं, है ना? जो अवगुणों के आधार से हम विचार करते हैं वो है नेगेटिव, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, ये इन सभी के आधार से जो हम करते हैं वो है नेगेटिव विचार। और तीसरा है वेस्ट, व्यर्थ, जो सकारात्मक विचारों जितना शक्तिशाली भी नहीं है और नकारात्मक विचार जितना बलहीन भी नहीं है, वो बीच में है। वेस्ट कौन सा है? जो अनावश्यक पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, या बैठे बैठे पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं, बीत गई बातें लेकिन उसको लेकर के हम बैठे हुए, उसको लेकर के हम सोच रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, शक्ति क्षीण होता जा रहा है, आत्मिक बल कम होता जा रहा है। नकारात्मक विचार जितना खतरनाक भी नहीं है लेकिन स्लो पॉइजन की तरह वो कम होता जाएगा वेस्ट विचार करने से। और अनावश्यक भविष्य की चिंता, अभी घटनाएं घटी नहीं है लेकिन उसके बारे में सोच रहे, अरे 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, अगर ये हो जाए तो क्या होगा, घटी नहीं है उसको लेकर के हम चिंतित हो रहे हैं, वो भी अनावश्यक है ना। तो ये स्लो पॉइजन की तरह आत्मा की शक्ति कम होता हुआ नजर आता है। और चौथे प्रकार के विचार है आवश्यक विचार, जो हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति, जो यहाँ जाना है, ये काम करना है, ये सब, ये मार्केट जाना है, जो कर्म के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जो हम सोचते हैं, वो है आवश्यक विचार। है ना, दिन भर में अपने आप को देखे, दिन भर में कौन सा विचार हम ज्यादा उत्पन्न करते हैं? अपने आप को देखिए, कौन सा विचार ज्यादा करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट या आवश्यक? आवश्यक, यहां बैठे बैठे भी आवश्यक सोच रहे हैं, क्या करना है वापस जाने के बाद, ये करना है वापस जाने के बाद, क्या करना है, ये सोचना ये वेस्ट है या आवश्यक है? वेस्ट है, क्योंकि यहाँ 3 दिन जब तक आप यहाँ हैं, ज्ञान सरोवर में हैं, वहां पर जाने को कुछ भी नहीं कर सकते, राइट? चलो फोन पे भी कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन फिर 8 बजे के पहले तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप। जब तक ये सेशन में बैठे हैं तब तक कुछ नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ बैठे जो करना है फ्यूचर में, उसके बारे में सोचेंगे, वो वेस्ट में गिना जाएगा, है ना? तो मेजॉरिटी क्या सोचते हैं हम, अभी बताइए क्या सोचते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव वेस्ट या आवश्यक? वेस्ट, मेजॉरिटी, मेजॉरिटी वेस्ट हम सोचते हैं, क्योंकि बैठे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, फ्लाइट में बैठे, ट्रेन में बैठे, कुछ करना नहीं है, तो बुद्धि यहां वहां जाना शुरू कर, वेस्ट है ना? तो वेस्ट विचार ज्यादा ज्यादा, वो स्लो पॉइजन की तरह है। तो इसलिए वो जो वेस्ट ज्यादा हो जाता है, धीरे 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 डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब बातें धीरे धीरे से ऐसे आएगा। तो इसलिए हमें अपने आप को आत्मचिंतन क्यों करने के लिए हम कहते हैं, अपने आप को आत्मदर्शन करने की क्यों कहते हैं, तो जब हम करेंगे तो पता चलेगा कि मैं क्या सोच रही हूं। आत्मदर्शन, आत्मचिंतन क्या है, बहुत बड़ी बात नहीं है, क्या है, केवल अपने आप अटेंशन देना है कि क्या सोच रही हूं मैं। अगर नेगेटिव या वेस्ट सोच रही हूं तो उसका दिशा परिवर्तन करके पॉजिटिविटी के तरफ ले जाना है, बस चेक और चेंज, चेक और चेंज। जब हम चेक करते हैं मैं क्या सोच रही हूं, तो फिर उसको चेंज हम कर सकते हैं। यही आत्मचिंतन है, आत्मा दर्शन है, है ना? अपने आप पर अटेंशन देना, क्योंकि अक्सर करके हम अपने विचारों पर अटेंशन नहीं देते, क्या वो बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, एक के पीछे एक विचार आ रहे हैं, उसको हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। और ये विचार फिर हम कहते हैं विचार आ रहा है, विचार आ रहा है, कहां से आ रहा है विचार, कहां से आ रहा है विचार, कोई वहां ऊपर से कोई भेज रहा है विचार, ऐसा कहां से आ रहा है विचार, कहां से आ रहा है, कोई भेज रहा है विचार? विचारों के रचयिता मैं खुद हूं, इस बात को मानेंगे सब, विचारों के रचयिता आप आत्मा खुद है, जैसा चाहूं वैसा मैं सोच सकती हूं, ऐसा है, ऐसा है, कंट्रोल, मैं मालिक हूं, मैं जो चाहूं वैसे मैं सोच सकती हूं, है ना? तो जब ये मालिकपन आ जाता है तो फिर उस उन विचारों को हम परिवर्तन कर सकते हैं। घड़ी घड़ी वो घंटी बजता है कि जब भी नेगेटिव सोचना शुरू करती हूँ, फिर नहीं नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। जब ये अभ्यास करना शुरू करते हैं बहुत इजी हो जाएगा, अपने आप मनोबल बढ़ाने के लिए पॉजिटिव सोच बढ़ाना शुरू करना पड़ेगा। और इस दूसरा जो अंग है वो है बुद्धि, मन बुद्धि को दे देते हैं, मन बुद्धि और संस्कार, सेकंड ऑर्गन है बुद्धि, बुद्धि से हम निर्णय करते हैं, है ना, मन से सोचते हैं और बुद्धि से डिसाइड करते हैं, निर्णय करते हैं, डिसाइड एनालाइज करना, डिसाइड करना, चूज करना, बहुत सारे ऑप्शंस है उसमें से चूज करना या उसको परखना, ये सब कर्म बुद्धि करता है। और बुद्धि एक फिल्टर की तरह है, जो चाय छानते हैं ना, चाय जब छानते हैं तो फिल्टर होता है, तो वो जो पत्तियां हैं वो ऊपर रह जाता है और चाय जो लिक्विड है वो नीचे चला जाता है। और बुद्धि भी वो छन्नी की तरह है, वो फिल्टर की तरह है, जो बहुत सारे विचार आएंगे मन में, लेकिन बुद्धि ने एक डिसाइड किया, जैसे डिसाइड किया बाकी जो बातें हैं वो लुप्त हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ आने के लिए निमंत्रण मिला, दीदी आकर के आपको निमंत्रण दिया, सब सब भाई साहब या बहन जी जो आप ये प्रोग्राम हो रहा है आप चलिए, निमंत्रण मिला, निमंत्रण मिलने के बाद क्या विचार चला, जाना है नहीं जाना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन दिनों में मैं फ्री हूं नहीं हूं, बहुत सारे विचार चला, जाए नहीं जाए, बहुत सारा चल रहा था। लेकिन सब कुछ होने के बाद फिर आपने निर्णय लिया जाना है, निर्णय लेते ही सारा कुछ खत्म हो गया, नहीं सब कुछ खत्म हो गया, फिर निर्णय लिया जाना है, फिर कैसे जाना है, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, कैसे जाना है, फिर वो प्लान करना शुरू किया, है ना। बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन एक निर्णय लिया और फिर वो कर्म में परिवर्तन हो जाता है, है ना। इसीलिए बुद्धि को क्लियर रखना बहुत जरूरी है। जैसे चाय की छन्नी में अगर ब्लॉकेज हो जाता है, वो फिल्टर में ब्लॉकेज हो जाता है, तो क्या होगा, पास ही नहीं होगा, है ना, जो भी चीज डालेंगे उस तरफ वो जाएगा ही नहीं, वो ब्लॉक हो जाता है। जो भी हम सोच रहे हैं, बुद्धि अगर ब्लॉक है, डिसीशन हम नहीं ले पाते, कंफ्यूज्ड रहेंगे कि क्या करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि बुद्धि एकदम ब्लॉक हो गया है, ऐसा लगता है, है ना। बुद्धि एक ब्रेन की बात नहीं है, बुद्धि आत्मा की बात है। जड़ शरीर, जड़ ब्रेन सोचता नहीं है, जड़ ब्रेन निर्णय नहीं लेता है, लेकिन आत्मा निर्णय लेती है। तो इसलिए वो ब्लॉकेज इन बुद्धि में होता है, तो वो बुद्धि को क्लियर करने की जरूरत है। और फिर अगर छेद है, तो बुद्धि में अगर छेद है तो क्या होगा, फिल्टर में वो छन्नी में अगर छेद है, जो भी डालेंगे बह जाएगा और उस तरफ चला जाएगा, है ना। अगर बुद्धि में अगर छेद है तो क्या होगा, जो सोचेंगे वो करना शुरू करेंगे। इसलिए कहते हैं जो भी कर्म करेंगे सोच समझ करके कर्म करो। इसका मतलब क्या है, सोच समझ करके कर्म करना, सोचो और किया, समझा नहीं तो वहां छेद है। सोचना मन से है, समझना बुद्धि से है, सोचा समझा मन, सोचा बुद्धि समझा, फिर जब हम कर्म करते हैं वो यथार्थ कर्म होगा। लेकिन सोचा और कर लिया वो एक इनवॉलंटरी रिएक्शन जब हो जाता है, जैसे एक चोर नया नया चोरी करना शुरू करते हैं, वैसे तो वो चोर नहीं है, लेकिन पहली बार जब चोरी करना शुरू करता है तो कोई मतलब बहुत सारे विचार आते हैं बुद्धि में कि करे नहीं करे, नहीं करना चाहिए, चोरी करना पाप है, नहीं करना चाहिए, गलत है, ये बहुत सा द्वंद्व चलता है बुद्धि, करे नहीं करे, लेकिन फिर कहता कि कर ही लो एक बार, देख लेते हैं बाद में, देखा जाएगा, जो होगा होगा, तो वो चोरी कर लेता है, तो वो एक प्रकार से संस्कार बन गया, वो टेस्ट बैठ गया। फिर दोबारा जब वो चोरी करने के लिए जाता है या फिर कोई मौका मिलता है चोरी करने का, फिर से वो विचार आता है कि करे ना करे, करे ना करे, फिर वो कर लेता है। तो वो जब जितने बार वो कर्म रिपीट किया, उसने चोरी का कर्म वो जब जितने बार रिपीट किया, संस्कार पक्का हो गया चोरी का। 15-20 बार उसने चोरी कर ली और 21वीं बार बुद्धि बोलना बंद कर देता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। बुद्धि बोलना बंद कर देता है किस कोई भी चीज देखा, जरूरत है कि नहीं है, ऑटोमेटिकली हाथ जाना शुरू होता है। विवेक का की आवाज को हमने चुप करा दिया है ना। इसलिए कहते हैं सब जीवन में सबसे बड़ा पाप कौन सा है, अपने विवेक की आवाज को घोट देना, वो है सबसे बड़ा पाप। क्योंकि जब भी हम गलत कर्म करने जाते हैं, बुद्धि की आवाज आता है, विवेक की आवाज आता है, नहीं करो, गलत है, नहीं करो, गलत है ना। आता तो है लेकिन उसको चुप करा देते, चुप रहो तुम, चुप करा करके वो गलत कर्म करते हैं। जितने बार हम चुप कराते हैं, बाद में वो बोलना ही बंद कर देते। माना छेद माना, वो बोलना ही जब बंद कर दिया, सोचा किया, सोचा किया, है ना, वो बहुत खतरनाक बात हो जाता है। इसीलिए मन को क्लीन और बुद्धि को क्लियर रखना बहुत जरूरी है। मन को क्लीन माना कोई भी नकारात्मक विचार नहीं है, कोई भी व्यर्थ विचार नहीं, जितना हो सके मैक्सिमम हम सकारात्मक विचार करते चले, वो बुद्धि को मन को क्लीन रख सकते हैं। और बुद्धि को जितना हम क्लियर करते जाएंगे, बुद्धि को क्लियर करते जाएंगे, फिर निर्णय हमारा क्लियर होता जाएगा, बहुत यथार्थ होता जाएगा, कर्म शुद्ध होता जाएगा। तेलुगु ट्रांसलेशन चल रहा है, जिनको तेलुगु ट्रांसलेशन की जरूरत है यहां आ सकते हैं, तेलुगु ट्रांसलेशन के लिए यहां आ सकते। तो ये रही मन और बुद्धि की बात। इसीलिए मन एक घोड़ा है लेकिन बुद्धि घुड़सवार है, है ना। घोड़े को पता नहीं है कहाँ जाना है, घोड़े को पता नहीं है कहाँ जाना है, घुड़सवार को पता है कहाँ जाना है, है ना। बुद्धि को जब हम शक्तिशाली बना के रखते हैं, मन की शक्ति को यूज करते हुए हम कर्म कर सकते। इसलिए बुद्धि की शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है और मेडिटेशन के द्वारा, योग के द्वारा मन क्लीन और बुद्धि को क्लियर हम रख सकते हैं और कर्म शुद्धि इससे होता जाएगा, है ना। और तीसरी बात है संस्कार, है ना। जो निर्णय करते हैं वो कर्म होगा, जो निर्णय करते हैं वो कर्म में परिवर्तन हो जाएगा, जो हम कर्म करते जाएंगे वो संस्कार बनता जाएगा, है ना। वो संस्कार जैसे छोटे बच्चे में कौन सा संस्कार होता है, जो अभी अभी एक घंटा पहले जो जिस बच्चे ने जन्म लिया है उसके अंदर कौन सा संस्कार होता है। अभी एक घंटा पहले जो बच्चे ने जन्म लिया है उसके अंदर कौन सा संस्कार है। कोई बच्चा गरीब घर में जन्मता है, कोई बच्चा अमीर घर में जन्मता है, कोई बीमार जन्मता है, कोई तंदुरुस्त जन्मता है, कोई जन्मते ही माँ बाप उनको छोड़ देते हैं, मतलब कहीं अलग अलग परिस्थितियों में बच्चे पैदा होते हैं। ऐसा क्यों है, कोई अमीर घर में क्यों जन्मते हैं, कहीं यहाँ ही जन्म, क्यों ऐसा है। कौन सा बच्चा, कौन से संस्कार है जो बच्चा लेकर के जन्मता है, पूर्व जन्म के संस्कार, है ना। संस्कारों के आधार से हमारा जन्म होता है। इसलिए कहते हैं वी चूज अवर पेरेंट्स, अपने माँ बाप को हम चूज करते हैं। ऐसा नहीं कि माँ बाप ने हमें चूज किया, नहीं, एक आत्मा अपने माँ बाप को चूज कर, कर्म के आधार से हम चूज करते हैं कि मुझे यहाँ जाना है, कर्म के संस्कारों के आधार से हमारा जन्म होता है। और जब पहला संस्कार है पास्ट जन्मों का संस्कार, और नेक्स्ट संस्कार जैसे जैसे बच्चा जैसे बड़ा होना शुरू होता है तो उसके अंदर जीन्स है, जीन्स माना अपने माँ बाप के भी संस्कार, जो इस जन्म के जो माँ बाप के संस्कार है वह ऐड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि शरीर में वो जीन्स माँ बाप के जीन्स है उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए पास जन्म के संस्कार के साथ साथ इस जन्म के माता पिता के संस्कार भी जुड़ना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तीसरे प्रकार के संस्कार जो जुड़ता है वो वातावरण, जिस वातावरण में वो पलता है, जिस संघ में वो पलता है, स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, जिसके संघ वो करता है, तो उनका प्रभाव आत्मा पर पड़ती है। वो संस्कार, वो कर्म रिपीट होने के कारण से वो संस्कार बनता जाता है। और चौथे प्रकार के संस्कार हम खुद बना सकते हैं, भले मेरा पास्ट जन्म का जो कर्म इतना अच्छा नहीं होगा, मेरे पास्ट जन्म के संस्कार इतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन अभी इस जन्म के भी जो माता पिता का जो वातावरण मुझे मिला भले ठीक ना हो, या फिर मेरा संघ भी ठीक ना हो, लेकिन अगर मेरे अंदर वो दृढ़ संकल्प है मुझे परिवर्तन होना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे अंदर वो एडिक्शन हो गया कि ना कोई प्रकार का एडिक्शन हो गया, संघ के का रंग पड़ गया, इसके कारण से मेरा वो हो गया, लेकिन मैं आज मैं निर्णय ले लूं, डिसीशन लूं कि मुझे इससे बाहर आना है, तो फिर वो परिवर्तन हो सकता है। तो दृढ़ संकल्प से हम अपने संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। आत्मचिंतन से और परमात्मा से शक्ति लेते हुए हम इन संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं, और करते हुए जो पांचवे संस्कार है जो शुद्ध, जो सातों ही गुणों से भरपूर, जो हमने देखा आत्मा जो शुद्ध पावन पवित्र है, किसी भी नकारात्मक संस्कारों से मुक्त है, वो ऐसा संस्कार तक हम आत्मा जा सकती है, है ना। भले कैसे भी संस्कार है, पास्ट के प्रेजेंट के, दृढ़ संकल्प से पुरुषार्थ से परमात्मा की मदद से हम अपने संस्कारों को बदल करके शुद्ध पावन और पवित्र संस्कार बना सकते हैं, है ना। संस्कारों में ये सब बातें हैं, हमारे हैबिट्स हैं, हमारे यादें हैं, बहुत जो भी इस जन्म की यादें हैं, जो ब्रेन में ये भरा हुआ है, वो सारी बातें इस जन्म के हैं, लेकिन इस जन्म के साथ साथ पूर्व जन्म के भी कनेक्टेड बातें होती हैं। तो इसीलिए इन सभी बातों को निकाल करके शुद्ध संस्कार के तरफ ले जाने के लिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास, आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम यहाँ कहते हैं ये जो राजयोग है, हम केवल बैठ करके योग करने की बात नहीं है, लेकिन कर्म योग भी है, कर्म करते समय भी हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कोई भी कर्म कर रहे हैं, चाहे भोजन बना रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, जहाँ बुद्धि का यूज ज्यादा नहीं है, तो वहाँ हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हुए एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखना बहुत जरूरी होता है। इससे क्या होगा, क्योंकि अभी तक जो हम अपने आप को ये देह के साथ कनेक्ट कर रहे थे, देह के साथ आइडेंटिफाई कर रहे थे, इसको त्याग करके जब आत्मिक दृष्टि से एक दूसरे को जब हम देखते हैं, वहां कोई भी हद की बात नहीं होता। ये इस धर्म के है, ये इस धर्म के है, इस देश के, इस जाति के हैं, ये इस, तो ये जो हद की बातें यहाँ नहीं होता। तो केवल जब आत्मिक दृष्टि से देखना शुरू करते हैं तो जैसे आकाश में सितारे हैं। आकाश में सितारे कैसे होते हैं? आकाश में जब सितारों को देखते हैं तो चमक है, लेकिन डिफरेंस क्या है वहां? वो कोई डिफरेंस नहीं होगा, कुछ सितारों की चमक ज्यादा होगी, कुछ सितारों की चमक थोड़ा कम होगा, उसके अलावा कोई और नहीं होगा, है ना। ऐसे ही जब हम एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, समझ कर, भले हमको दिखाई नहीं देगा, आपको मेरा आत्मा तो नहीं दिखाई देगा ना इन आंखों से, लेकिन ये समझ है, ये भी एक आत्मा है। समझ के साथ जब हम व्यवहार करते हैं तो वहां कोई भी ये जो नेगेटिविटी है, नकारात्मक कर्म है, नकारात्मक दृष्टि है, नकारात्मक सोच है, इन सभी बातों से हम मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि जो भी नकारात्मक सोच है वो देह भान के कारण से आता है, देह भान के कारण से आता है। जैसे ही मैं आत्मा सोचा, वो ऑटोमेटिकली एनर्जी के साथ मेरा कनेक्शन हो गया। जब आत्मा देखा तो फिर वो आत्मा के गुणों के बारे में हम सोचना शुरू करते हैं, वहां नकारात्मक भावनाएं नहीं होती, वह एनर्जी फ्लो भी आत्मा से आत्मा तक जाती है, शरीर से नहीं जाता। शरीर तो जड़ है ना, शरीर से शरीर एनर्जी नहीं जाएगा, आत्मा से एनर्जी जाती है। तो इसीलिए आत्मा समझ करके जब हम कर्म करते हैं, बहुत कुछ परिवर्तन अपने जीवन में दिखाई देना शुरू होगा। इसीलिए दोनों में, देह भान और आत्मिक भान में, बॉडी कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस में क्या अंतर है? देह भान में रहने से हमारा कंपैरिजन होता है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये इस पोजीशन वाले, ये वाले। हाँ, पोजीशन वालों के हिसाब से रेस्पेक्ट तो रखना है, लेकिन उस रीति से व्यवहार नहीं होगा, है ना। छोटे सर वालों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं, वो भी एक आत्मा, वो भी एक इंसान है, वो एक रेस्पेक्ट के साथ हमारा व्यवहार होगा, क्योंकि वो भी एक आत्मा है। वह कंपैरिजन नहीं होगा, वह एक्सेप्टेंस रहेगा। और देह भान में डिवाइड, ये उस धर्म के, ये इस देश के, ये वो पराया है, वो अपने है, ये पराया, पराया और अपना होगा देह भान में। लेकिन आत्मिक दृष्टि में सब एक है, है ना। हम सभी कहते हैं हिंदू, सिख, ईसाई, सब एक है। किस आधार से हम एक है? आत्मिक दृष्टि से हम एक है, है ना। और एक परमात्मा के संतान होने के नाते से हम सभी आत्माएं एक है। वो यूनिटी, एकता आएगी आत्मिक दृष्टि से, आत्मिक स्मृति से। और तीसरी बात है, देह भान में ये जो भी हमें कर्मेंद्रियों के वशीभूत हम हो जाते हैं, ये देखना है, ये खाना है, ये सुनना, उसके कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो जाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे देह भान में। लेकिन आत्मिक स्थिति में हम कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने वाले, जो सुनना चाहे वही सुनूं, जो बोलना चाहो वही बोलूं, जो देखना चाहो वही देखूं, और जो सोचना चाहूं वही सोचूं। कई बार इस आवेग में आकर के हम कुछ बोल लेते हैं, बोलने के बाद फिर पछताते, अरे मेरा भाव ऐसा नहीं था। शब्दों को नहीं पकड़ो आप, भाव को देखो। बोल तो निकल गया, बोल निकलने के बाद हम कहेंगे, पछताएंगे। क्यों हुआ? क्योंकि कर्मेंद्रियों के हम मालिक नहीं रहे, कर्मेंद्रियों के वशीभूत हम रहे। कोई ना कोई प्रभाव में आकर के हमने कर्म कर लिया, कर्म कर लेने के बाद हम जब पछताते हैं, इसको क्या कहेंगे? कर्मेंद्रियों के वशीभूत, कर्मेंद्रियों के मालिक नहीं रहे, है ना। जब हम अक्सर करके हम जेलों में जाते सेवा करने के लिए, कैदियों की सेवा करने के लिए जाते हैं, वह राखी बांधने के लिए भी जाते हैं, तो उनकी कहानी जब हम सुनते हैं ना कैदियों की, तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हैं, डबल डिग्री वाले पीएचडी होल्डर्स है, बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हुए हैं, लेकिन कहते भाई साहब आप क्यों इस जेल में आ गए? कहते आवेग में आ गए, क्रोध आ गया, वहां जो भी चीज पड़ा था उठा करके फेंक दिया, वो आदमी मर गया। एक सेकंड का क्रोध, मारने का लक्ष्य नहीं था, वो इरादा नहीं था, लेकिन क्रोध इतना ज्यादा हो गया, उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, जो भी चीज पड़ा था उठा करके फेंका, मर्डर हो गया। इसके लिए जेल का एक सेकंड, उस समय थोड़ा कंट्रोल कर लेते, कर्मेंद्रियों के वशीभूत होने से इतने बड़े बड़े पाप कर्म हो जाते हैं। इसीलिए कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में रखने की जरूरत है। वो कैसे कंट्रोल में रखेंगे? मैं आत्मा मालिक हूं, मैं आत्मा आंखों को कंट्रोल कर सकती हूँ, कानों को कंट्रोल कर सकती हूँ, मुख को कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं आत्मा मालिक समझ करके जब हम कर्म करते हैं तो कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो जाएंगे तो बड़े बड़े पाप कर्म हो जाते हैं। और इसीलिए जब हम देह समझते हैं तो मृत्यु का डर हमें बहुत सताता है, अगर मर जाऊं तो क्या होगा? जब आत्मिक स्थिति पता है, मैं आत्मा हूं ये पता है, और एक ना एक दिन इस शरीर को तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, कोई भी अमर रह करके इस शरीर में नहीं रह सकते, ये प्रकृति का नियम है, इस शरीर जब मैंने जन्म लिया है तो मृत्यु भी निश्चित है। जब मैं आत्मा हूं और इस यात्रा से मेरा यात्रा खत्म नहीं होगा, इस शरीर को छोड़ने के बाद भी मेरी यात्रा आगे है ना, आगे है ना। जब ये समझ के साथ हम जब रहते हैं तो मृत्यु से हमें डर नहीं लगता, हमें पता है कि मैं आत्मा अमर हूं, मुझ आत्मा के कोई मृत्यु नहीं है, लेकिन केवल ड्रेस और एड्रेस बदलना है, बस ड्रेस और एड्रेस बदलना है। ये जो ड्रेस है ना शरीर, है ना, ये ड्रेस बदलना है, और आज माउंट अबू में हूं मैं इस जन्म में, कहीं और नेक्स्ट जन्म में मेरा एड्रेस बदल जाएगा, ड्रेस और एड्रेस बदल जाएगा, लेकिन आत्मा की जर्नी आगे चलती जाएगी। जितना जल्दी उस बात को एक्सेप्ट करेंगे, हम खुशी खुशी से जी सकते हैं और मृत्यु से हमें डर नहीं लगता है। इसीलिए इस पूरे सेशन को हम अगर वाइंड अप करते हैं, कौन कौन सी बातें हमने देखी आज, है ना, आत्मा के परिचय में। जब भी हम कोई भी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन में कुछ बातें हम अपने इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, है ना, कौन कौन सी बातें लिखते हैं? सबसे पहली बात नाम, है ना, आत्मा का नाम क्या है, शरीर का नाम लिखते हैं, मेरा शरीर का नाम सुमन, सिस्टर सुमन बहन है तो मैं सुमन बहन लिखती हूँ, लेकिन वो तो शरीर का नाम हो गया ना, आत्मा, आत्मा कहे, रूह कहे, स्पिरिट कहे, प्राण, एनर्जी, वो आत्मा है, है ना। और फॉर्म, हम फोटो भी चिपकाते हैं, फॉर्म मतलब रूप देखने के लिए फोटो, आत्मा का रूप क्या है, आत्मा का रूप क्या है, कैसे दिखती है आत्मा, आत्मा कैसे दिखती है, पॉइंट ऑफ लाइट, सितारे की तरह, है ना, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, जिसको हम इन स्थूल आंखों से नहीं देख सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं, वो धरती का सितारा, जैसे आकाश का सितारा है, हम सभी धरती के सितारे हैं, पॉइंट ऑफ लाइट, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप। और आपका जन्म, आत्मा का जन्म, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, इस देह का डेट ऑफ बर्थ है ना, आत्मा का डेट ऑफ बर्थ है अजर अमर अविनाशी है, उसका कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है। आत्मा थी और आगे भी रहेगी, आत्मा का कोई भी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, अजर अमर अविनाशी है। और एड्रेस क्या है आत्मा का, आप आत्मा का एड्रेस क्या है? उसमें दो एड्रेस है, पता है कौन सा एड्रेस? एक है टेम्पररी एड्रेस और एक परमानेंट एड्रेस। फॉर्म में भी लिखते हैं, एक टेम्पररी एड्रेस लिखते हैं, एक परमानेंट एड्रेस लिखते हैं। टेम्पररी एड्रेस कौन सा है आपका? टेम्पररी एड्रेस कौन सा है आत्मा का? देह, यहाँ यहाँ ये टेम्पररी एड्रेस है। एक ना एक दिन इस एड्रेस को मुझे छोड़ना है ना, ये टेम्पररी एड्रेस है। और परमानेंट एड्रेस परम धाम, जिसको हम परम धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना, ऊपर से आए हैं और ऊपर जाना है। ऊपर कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं? परम धाम, आत्मा का ओरिजिनल घर, जो परमात्मा का घर, हम सभी आत्माओं का घर है परम धाम। परम बहुत, वो परम धाम, निर्वाण धाम, वाणी से परे वाला धाम, परम धाम। तो वहां से हम यहाँ आए हैं, तो उसके लिए कहते हैं वहां परमानेंट एड्रेस है और ये टेम्पररी एड्रेस एक के बाद एक हम लेते जाएंगे। और क्वालिफिकेशन क्या है आपका, आत्मा के क्वालिफिकेशंस क्या है? आत्मा के क्वालिफिकेशन क्या है? जो भी हम पढ़ाई, लौकिक में क्या होता है, जो भी हम पढ़ाई कर, जो भी डिग्री लेते हैं उसको क्वालिफिकेशन कहते हैं, राइट? अगर हम, मैंने MBBS कर लिया, मैं डॉक्टरी कर सकती हूँ, किसी की चिकित्सा में कर सकती हूँ, किसी को ट्रीट कर सकती हूँ, वो मेरे अंदर स्किल्स आ गया है, मेडिकल डॉक्टर की स्किल्स आ गया, तो वो मेरा क्वालिफिकेशन है। इंजीनियरिंग मैंने पढ़ाई की, तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्चर, जो भी है उसके क्वालिफिकेशन, वो समझ आ गया, तो मैं वैसा कर्म, वैसे मैं प्रोफेशन में कर सकती हूँ, राइट? जो भी मैंने पढ़ाई किया उसके आधार से मेरा क्वालिफिकेशन निर्धारित होता है, राइट? यहाँ आत्मा के क्वालिफिकेशन क्या है, आत्मा की क्वालिफिकेशन क्या है? जो सात गुण है, कौन कौन से हैं? सातों ही गुण आत्मा के क्वालिफिकेशन है। उस आधार से मैं कर्म करती हूँ, उन गुणों को यूज करते हुए मैं कर्म करती हूँ। कौन कौन से गुण हैं? शांति, आनंद, सुख, प्रेम, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति, है ना? ये सात गुण आत्मा के गुण है, उन गुणों को यूज करते हुए हम कर्म करें। जैसे रेनबो होता है, विभ्य और सात रंग होते हैं, ऐसे ही आत्मा के ये सात गुण है, जो आत्मा के ओरिजिनल क्वालिफिकेशन है, उन गुणों को यूज करते हुए हम कर्म करें। हमारा ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है? गुणों को यूज करते हुए कर्म करना है, लेकिन लक्ष्य क्या है जीवन का, जीवन का लक्ष्य क्या है? पैसा कमाना और क्या क्या है, बहुत सारे, लंबा लिस्ट होता है ना ऑक्यूपेशन। क्या है लक्ष्य, क्या है जिंदगी का? लक्ष्य क्या है आज सोचना, इसके बारे में कुछ अलग लक्ष्य लेकर के जाना जिंदगी के लिए। जो स्थूल चीजें हैं, ठीक है, ये पाना, ये पोजीशन पाना, ये बन जाना, ये करना, ठीक है, वो भी जरूरी है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। पोस्ट पोजीशन चाहिए अपना कर्म करने के लिए, और समाज पर प्रभाव अपना, वो समाज को बदलने के लिए पोस्ट पोजीशन चाहिए, लेकिन वही सब कुछ नहीं है, है ना। तो आज इसके बारे में सोचिए, आपका लक्ष्य क्या है जिंदगी का। तो हम ये हमारे यूजुअली हम यहां क्या कहते हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। मैं खुद बदलूं तो फिर मैं समाज को बदल सकूं। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। मैं अच्छा बन जाऊं, मुझे देख करके अनेक लोग प्रेरणा मेरे से लें, है ना। तो वो पर्टिकुलरली स्व परिवर्तन में भी क्या ऐसा लक्ष्य है जीवन में, हायर पर्पस जो कहते हैं ना, तो वो लक्ष्य क्या है उसके बारे में जरूर सोचना, क्योंकि वही का वही चीज आगे के लिए काम जरूर आता है। ठीक है, ये संक्षिप्त में आत्मा का पूरा बायोडेटा, आत्मा का पूरा परिचय आपको मिल गया। तो चलिए अभी हम थोड़े समय के लिए मेडिटेशन करते हैं। आसपास के वातावरण से, लोगों से, अपने मन और बुद्धि को किनारा करें, डिटैच करें। सभी आवाजों से डिटैच हो जाए और मन और बुद्धि को भ्रुकुटि के मध्य में केंद्रित करें। मन के स्क्रीन पर अपने आप को देखने की कोशिश करें, एक चमकता हुआ अजब सितारा। वो सितारा मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप भ्रुकुटि के मध्य में विराजमान। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूं। मेरे में चैतन्यता है। ये शरीर मेरा वस्त्र है, जिसको धारण कर मैं आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करती हूं। कर्म करने वाली मैं आत्मा हूं। मालिक हूं। भ्रुकुटि के मध्य में विराजमान होकर मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देखती हूं। ये आंखें मुझ आत्मा की खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों के द्वारा मैं आत्मा संसार को देखती हूं। कानों द्वारा सुनती हूं। ये कान मेरे स्पीकर्स हैं। इन कानों द्वारा शब्दों को सुनती हूं, आवाज को सुनती। मुख द्वारा मैं आत्मा बोलती हूं। ये मुख मेरा माइक है। अलग अलग कर्मेंद्रियों के द्वारा अलग अलग कर्म करती हूं। अधिकारी हूं, राजा हूं इन कर्मेंद्रियों के। मुझ आत्मा के निजी गुण शांति है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। भ्रुकुटि के मध्य में विराजमान होकर मुझ आत्मा से शांति के प्रकंपन चारों ओर फैल रहे। महसूस करें, मैं आत्मा शांति की शक्ति को पूरे ब्रेन में फैला रही हूं। धीरे धीरे पूरे शरीर में वो शांति की शक्ति फैलता जा रहा है। मैं आत्मा ओरिजिनली शुद्ध हूं, प्रबुद्ध हूं, पवित्र हूं। पवित्रता की किरणें पूरे ब्रेन में होते हुए पूरे शरीर में फैल रहे। लाइट होती जा रही है। हल्की होती जा रही है, प्रकाशमय होती जा रही है। सातों ही गुण मुझ आत्मा के ओरिजिनल गुण है। इन गुणों को मैं अपने कर्मों में यूज कर रही हूं। कर्मों में यूज करते हुए, कर्मों में परिवर्तन, संस्कारों में परिवर्तन आता जा रहा है। और मैं आत्मा शुद्ध पवित्र अपने अनादि स्वरूप में स्थित होती जा रही हूं। शक्तिशाली, सर्व गुणों से संपन्न, सर्व शक्तियों से भरपूर, यही सकारात्मक प्रकंपन मैं चारों तरफ फैला रही हूं। और जिनको भी देख रही हूं आत्मिक स्मृति से, आत्मिक दृष्टि से, उस व्यक्ति के साथ मैं व्यवहार कर रही हूं। इस शुद्ध दृष्टि, वृत्ति और कृति के आधार से संसार में सुख और शांति के वाइब्रेशंस फैला रही, ओम शांति।